ओम शांति। आज हम सभी के मध्य आदरणीय जयंती बहन जी उपस्थित हैं। हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी बाबा के घर में आए, बाबा के घर में आप सभी का शांतिवन में भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं और 30 वर्षों से अपनी जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करके अनेक आत्माओं के कल्याण के कार्य में आप तत्पर हैं और आप विशेष आत्मा जिनकी वाणी में विशेष मधुरता और वाणी का बल आपके पास इतना है कि आप जिसको भी बाबा का नाम देते हैं वो बाबा का बच्चा बन जाता है। आप विशेषताओं से भरी हुई एक मूर्ति हैं, जैसा नाम है वैसे आपके गुण हैं। आप सरल चित भी हैं, व्यवहार कला कुशल है और आप कुशल वक्ता भी हैं। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय जयंती बहन से, आप जयपुर बापूनगर सेवा केंद्र का संचालन करते हैं, आदरणीय जयंती बहन।
ओम शांति। बाबा के इस वरदान भूमि, तपस्वी भूमि, स्वयं भगवान की कर्म भूमि, जहां भगवान स्वयं आकर हम आत्माओं के भाग्य को जगाते हैं, ऐसी इस तपस्वी भूमि में वही आत्माएं आती है जो भाग्यशाली है, क्योंकि मधुबन भूमि पर आने वाली आत्मा साधारण नहीं है। वो वे आत्मा है जिसके ऊपर स्वयं प्रभु की नजर पड़ी, या यूं कहे कि जो भगवान के नजरों में समाई है, प्रभु की नजर जिस पर पड़ी है वो आत्माएं ही इस धरा पे आती है। इसीलिए आप सब इस मधुबन भूमि में आए हैं। आप में से कई नए भी होंगे और कई पुराने भी होंगे, तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि जो हमें यहाँ आने को मिलता है, बड़ी दीदियों का और दादियों का प्यार वरदान और परमात्मा उन द्वारा ही हमें यहाँ पालना दे है। हमें ऐसा पिता मिला जो हमें पालना देकर सतयुगी दुनिया के योग्य बनाते हैं। दुनिया में बाप तो बहुत होते हैं, पिता तो बहुत होते हैं, लेकिन उसी पिता को अच्छा पिता कहा जाता है जो अपने बच्चों को योग्य बनाता है। वो पिता अच्छा नहीं है जो केवल धन कमा के रखता है, लेकिन वो पिता अच्छा है जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देता है। और हमें जो पिता मिला वो है ही सुप्रीम फादर, वो है ही सर्वोच्च पिता, और उसकी पालना, डायरेक्ट पालना हमें मिल रही है। इसीलिए मधुबन भूमि में आना, माना जैसे आप घर से आए हो यहाँ, तो सबसे पहले मन में ये विचार आया होगा कि हम मधुबन में जाएंगे, और जैसे ही ये विचार आया कि मधुबन जाना है, तो उस समय आपके मन की अवस्था कैसी हुई? मधुबन जाना है तो अवस्था मन की ऊंची बन गई, और भले अपने स्थान पे बैठे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मधुबन में हैं, क्योंकि मधुबन की केवल याद, केवल स्मृति ही हमें खुशी दिलाती है, क्योंकि स्वयं खुशियों का भंडार बाबा इसी धरती पर आकर हमें अविनाशी ज्ञान धन से भरपूर करते हैं। इसीलिए आप सबका बाबा के इस बेहद के घर में, इस ऊंचे घर में सबका स्वागत है, और यही कहना चाहूंगी कि यहाँ हम आए हैं अपने परिवार से छुट्टी लेकर आए, अपना काम पूरा सेट करके आए, तो हम इन दिनों को इतना सफल करें, और सफल करने का अर्थ ही ये है कि हम अपना जितना भी दिन हम यहाँ रहेंगे, 2 दिन 3 दिन, तो हम अपना पुण्य का खाता जमा करें, अटेंशन रखें कि परमात्मा भाग्य बनाने आए हैं और मुझे भी भाग्य बनाकर अपना खाता, पुण्य का खाता भरपूर करना है, क्योंकि सर्व खजानों का मालिक प्यारा बाबा हम आत्माओं को खजानों से भरपूर करता है। जैसे हमें कई खजाने मिले हैं, सबसे पहले हमें कौन सा खजाना मिला है? हम जैसे ही बाबा के घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले बाबा सत्य ज्ञान देते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, तो हमें ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है। आज के इस अंधकार के युग में हमें उजाला अर्थात प्रकाश, ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान सागर बाबा हमें ज्ञान के गुह्य गुह्य रहस्य बताते हैं, जिन रहस्य को समझकर हम आनंदित हो उठते हैं, या यूं कहे हमें सत्य का पता पड़ जाता है। ऐसा ज्ञान हमें मिला जो सर्वोच्च है और सर्वोच्च टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। स्वयं परमात्मा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, न केवल ज्ञान दिया लेकिन उस प्यारे बाबा ने हमें ज्ञान स्वरूप भी बना दिया। ज्ञानी तो बहुत है दुनिया में भी, लेकिन बाबा जो सरल और स्पष्ट ज्ञान हमें देते, वो ज्ञान ही अपने आप में ऐसा है, हम सुनते जाते सुनते जाते सुनते जाते और जीवन में वो उतरता जाता, क्योंकि सुप्रीम टीचर की पढ़ाने की जो विधि है मुरली, ये अपने आप में एक ऊंची पढ़ाई है, जिससे ऊंची पढ़ाई संसार भर में और कोई नहीं है। हर प्रकार का ज्ञान बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा देते हैं, चाहे व्यवहार का, चाहे पाप और पुण्य की समझ, स्वयं की समझ, परमात्मा की पहचान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये सारा ज्ञान बाबा हम आत्माओं को देते, जिससे हमारा जीवन आनंदित हो उठता। अगर हम ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं तो व्यर्थ संकल्पों से भी अपने आप मुक्त हो जाते हैं, और ये संकल्प जो है, जब ये संकल्प ही हमारे अच्छे बन जाते हैं तो कहा जाता, जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। तो बाबा हमें मुरली के द्वारा ऐसा रोज पढ़ाते हैं, जिससे हमारा चिंतन, जो हमारे थॉट्स है, वो बेहद के बनते जाते हैं। सबसे पहला पाठ ही बाबा ने कहा, खुद को भी आत्मा समझो और जिसको भी देखो आत्मा के स्वरूप को देखो। और जब हम आत्मा को देखते हैं तो हमारे भीतर जो भी कालापन आया है, आत्मा के भीतर जो कमजोरियां आई है, या जो पुराने संस्कार है, वो धीरे धीरे मिटने लग जाते। क्योंकि यही हमारा पहला पाठ ही इतना पावरफुल है कि स्वयं को भी आत्मा समझना है और दूसरे को भी, ये भी एक शुद्ध आत्मा है, ये भी परमात्मा का बच्चा है। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, जैसे कुछ अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, तो सोना जब निकाला जाता है तो कई टन मिट्टी को हटाया जाता है और फिर सोना प्राप्त होता है। लेकिन मेहनत भी है, पर प्राप्ति बहुत ऊंची है क्योंकि सोना मिलता है। और अगर वही जब खोदते हैं तो ये सोचे, अभी तो मिला ही नहीं है, थोड़ा सा और खड्डा किया, अभी तो मिला ही नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा गहराई में जाकर जब कितनी टन मिट्टी हट जाती है, तब सोना प्राप्त होता है। बाबा कहते, ये ज्ञान भी ऐसा है। जब हम सोना अर्थात जो मूल्यवान चीज है वो आत्मा, जब हम आत्मा को देखते हैं और स्वयं को भी आत्मा समझते हैं, तो आत्मा है ही परमात्मा की संतान, शुद्ध और पवित्र। तो हमारा जीवन भी सोने जैसा कीमती बन जाता है और हम जिसको भी देखते हैं उसकी भी हमें विशेषताएं नजर आती है। जब हम शरीर को देखते हैं, ये फलाना है फलानी है, या जैसे ही हम देह को देखते हैं तो हमें कमियां नजर आती है। लेकिन चाहे किसी में कितनी भी कमी हो, लेकिन हम आत्मा को देखते हैं तो उसके गुण नजर आते। और सबसे बड़ा गुण जो बाबा कई बार कहते हैं कि सबसे बड़ा गुण ये है कि जो भी बाबा के बने हैं उन्होंने सत्य बाप को पहचान लिया, उन्होंने सत्य ज्ञान को समझ लिया। इसीलिए हर बाबा का बच्चा अपनी जगह महान है, क्योंकि उसने सर्वोच्च पिता को पहचान लिया और उसे ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ। इसीलिए आत्मिक दृष्टि, आत्मा का ज्ञान हमें बाबा ने दिया, जो ज्ञान हमारे जीवन को श्रेष्ठ और महान बना रहा। उस खजानों के मालिक बाबा ने हम आत्माओं को दिव्य गुणों का खजाना भी दिया। दिव्य गुण मनुष्य जीवन की शोभा है और गुणवान मनुष्य संसार का मित्र, क्योंकि एक गुणवान मनुष्य अनेकों में गुण भर देता है। इसीलिए दिव्य गुण बाबा ने हमें गुणों का खजाना दिया है। बाबा ने हमें गुणों का महत्व सुनाया है और हमारा लक्ष्य ही है, हमारा लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। हमारा एम ऑब्जेक्टिव इतना ऊंचा है। कहते हैं नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। एक साधारण नर नारायण बनेगा, साधारण नारी लक्ष्मी बनेगी। केवल एक ही शब्द बीच में ऐसे कर्म करे, नर ऐसे कर्म करे। वो कौन से कर्म हैं जिस कर्मों के फलीभूत एक साधारण मनुष्य भी श्री नारायण बन सकता, श्री लक्ष्मी बन सकती। तो वो कर्म परमात्मा स्वयं हमें यहाँ सिखा रहे, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। दुनिया में भी ये पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ तो बाबा हमें और गहराई में ले जाते, कैसे सोचना है, क्या समझना है, स्वयं को आत्मा समझना है, और क्या सोचना है, क्या बोलना है। हर प्रकार की पालना बाबा हमें देते, जिससे हमारे भीतर दिव्य गुण आ जाते। क्योंकि हम आत्माएं भी जन्म मरण के चक्र में आते आते हमारे ऊपर भी द्वापर युग से जो भी हमारे भीतर संस्कार आए, और वो कुछ संस्कार कड़े संस्कार भी आ गए, और उसे निकालने के लिए बाबा ने हमें ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ाई। और जैसा जैसा हम पढ़ते जाते हैं हमारे भीतर स्वयं ही गुणों का विकास होता है। तो ये दिव्य गुण का खजाना हमें बाबा ने दिया। और सबसे बड़ा गुण है एक ऐसा गुण जिससे बहुत सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वो कौन सा गुण है जो हमारी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की नींव है, और जिस गुण के कारण ही आज भी संत महात्माओं की पूजा होती है, वो सबसे बड़ा गुण है पवित्रता का। पवित्रता सर्व गुणों की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी सब कुछ है। इस उच्च दिव्य गुण को धारण करने वाली आत्माएं इस संसार में साधारण नहीं है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा कि इस संसार में बुद्धिमान कौन है। वर्तमान समय बुद्धिमान वही है जो पवित्रता की उच्च धारणा को अपनाता है, जिसको ये संकल्प आता है पवित्र बने, पवित्र दुनिया का मालिक बने। वो आत्मा इस संसार में महान है। तो पवित्रता का दिव्य गुण का महत्व बाबा ने हमें बताया और कहा कि यही ब्राह्मण जीवन की नींव है, यही हमारा फाउंडेशन है, और यही हम ब्राह्मणों की शोभा है, और इसी कारण ही परमात्मा भी हम आत्माओं को प्यार करते हैं क्योंकि वो स्वयं पवित्रता के सागर है। फिर बाबा ने हमें खुशी का खजाना दिया। पहले हमारी खुशी किसी वस्तु किसी व्यक्ति पे डिपेंड थी। हमें कुछ अच्छा मिला खुशी होती थी, कोई व्यक्ति ने सम्मान किया या किसी व्यक्ति ने हमें प्यार दिया तो हमें खुशी मिलती थी। पर जब हम बाबा के बने हमें ये समझ मिली कि ये खुशी तो अल्पकाल की है। अगर सामने वाले का मूड अच्छा है और उसने मुझे सम्मान दिया प्यार दिया मीठा बोल दिया तो मैं खुश हूँ, लेकिन अगर उसका मूड ठीक नहीं है वो नहीं देगा तो मैं नाराज हूँ। ये गहरी समझ बाबा ने दी, कोई भी व्यक्ति और वैभव से सच्ची खुशी प्राप्त नहीं होती। सच्ची खुशी का आधार परमात्मा से संबंध है, परमात्मा से कनेक्शन है। हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे, हमारे खुशियों का आधार हमारा बाबा है, न कोई वस्तु न कोई व्यक्ति न वैभव है। क्योंकि हमने ये जान लिया कि ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब विनाशी है। भय था पहले कि जिनसे मुझे मिल रहा वो चले जाएंगे, तो ये वस्तु मुझे मिल रही है इससे मैं खुश हूं, नहीं मिलेगी तो भय भी था। पर बाबा के ज्ञान से हम निर्भय बन गए क्योंकि अब हमारा संबंध स्वयं खुशी की खान खुशी का भंडार शिव बाबा के साथ है। हमारी खुशी बाबा पे निर्भर है, न किसी व्यक्ति न किसी वैभव पर। इस सत्य की समझ हमें मिली और हमारी खुशी अगर कोई कारण से कम भी होती है तो बाबा ने हमें ज्ञान के ऐसे शस्त्र अस्त्र दिए हैं जिसे याद करो कि बाबा क्या कहते हैं, तो तुरंत हमारी अवस्था ऊंची हो जाती है। तो खुशी का खजाना हमें बाबा ने दिया जो आज बड़ा दुर्लभ है। आज दुनिया में बहुत कुछ है सबके पास, अक्सर कहते हैं, कई बार केंद्र पे भी कई आते हैं कहते, बहन जी भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, मकान है गाड़ी है बहू बेटी भी अच्छी है सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों खाली खाली लगता है, पता नहीं क्यों खुश नहीं रह पाते। क्या कारण है? क्योंकि वो खुशी विनाशी चीजों पर विनाशी चीजों के साथ समझते हैं। और हमें पता पड़ा कि इन चीजों में खुशी नहीं है, खुशी तो उस प्रभु याद में है, खुशी तो उस प्रभु के ज्ञान में है, उसके चिंतन से है, उसकी यादों में है। तो खुशी का खजाना भी हमें मिला। फिर सबसे बड़ा खजाना एक है जो सबको ही प्राप्त है, वो है समय का खजाना। समय हमें भी वही मिला 24 घंटा और बाहर वालों को भी वही मिला 24 घंटा, लेकिन हमें ये समझ मिली कि अब जो समय है ये संगम का समय है, हम संगम पे खड़े हैं। भविष्य को भी हमने भविष्य का भी हमें साक्षात्कार हुआ क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये जान लिया हमारा भविष्य क्या है, हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। बाबा ने हमें ये स्मृति दी और पास्ट का भी हमें बाबा ने साक्षात्कार करा दिया कि आप क्या थे और अब क्या बन गए। और वर्तमान जो है बाबा कहते हैं वर्तमान भी सामने है, स्वयं परमात्मा आए हैं हमें ज्ञान देने और हम संगम पर अब खड़े हैं। समय का महत्व, ये समय कीमती समय है। बाबा कहते हैं 1 सेकेंड 1 साल के बराबर है। बचपन में सुना करते थे कि ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत तपस्या करते हैं और तपस्या करते करते उनके ऊपर चींटियां घर भी बना लेती है, घास भी उग जाती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा? वास्तव में इसका यही अर्थ है कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो आत्म अभिमानी बनते, देह का भान हट जाता। तपस्या करते थे हजारों साल, शेर भी सामने आता था, जानवर भी आते थे चले जाते थे, तपस्या में बल था। वो तो हो गई स्थूल बात। बाबा कहते, अगर बाबा की याद में हो तो कैसी भी समस्या हो, परिस्थिति हो, वो भी आएगी और चली जाएगी, अनुभवी बनाकर चली जाएगी। हजारों साल तपस्या की, जब एक सेकंड ही एक साल के बराबर है, तो हमें वो तपस्वी है जो तपस्या करते हैं, देही अभी बनकर, आत्मा समझकर, देह का भान मिट गया। और परिस्थितियां कैसी भी आए, हम उन परिस्थितियों को भी जीत लेते बाबा की याद से, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। स्वयं शिव बाबा हमें स्वयं पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, और वही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख शांति की स्वयं राह दिखा रहे हैं। तो समय का खजाना हमें मिला, समय के महत्व को हमने जाना कि ये ओ समय चल रहा है बीज का। हर चीज का एक सीजन होता है और सीजन का फल अच्छा होता है। बिना सीजन का फल मिलता तो है पर उतना कोई टेस्ट नहीं होता है। हर चीज का एक समय होता है, सीजन होता है। ये भी आज बाबा ने हमें बताया कि ये भी सीजन चल रहा है भाग्य बनाने का, श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का ये समय चल रहा है। और हमें ये समझ मिली कि कैसे हमें श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोना है, और ये वो समय है। ये समय का कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा है, 5000 वर्ष साइकिल से जुड़ा है, क्योंकि बाबा ने कहा ये वो समय है जो परमात्मा स्वयं आकर डायरेक्ट हमें अपनी संतान बनाकर हमारा 5000 वर्ष का भाग्य बनाने आए। जो भी हम करेंगे अभी वही हमें मिलेगा, 84 जन्मों तक वही मिलता रहेगा। 21 जन्म तो है ही, लेकिन साथ में कई जन्मों तक भी हम देव कुल की आत्माएं हैं। हमारा लास्ट जन्म भी बहुत अच्छा है, ये सौभाग्य है। आप देखो, हम सबको ये शरीर मिला है, लेकिन इस संगम युग का ये शरीर, ये कान बड़े भाग्यशाली है, जिन कानों से हम परमात्मा के महावाक्य सुनते। कितने जन्म लिए होंगे हमने, कितने शरीर धारण किए हमने, लेकिन इस जन्म हमारा मूल्यवान है। इसी शरीर में बैठकर हम बाबा को याद करते, इन्हीं कानों से हम परमात्मा के महावाक्य सुनते। तो ये भाग्य बनाने का सीजन है। जितना चाहिए खुला भंडार है, जितना चाहिए उतना भर लो झोली। दौलत की है भरमार रे, भर लो अंतर की झोली, क्योंकि परमात्मा रत्नागर बाप रत्न लुटा रहे। रोज हमें ज्ञान सागर बाप रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे। हम जितना चाहे उसे धारण करके अपना भाग्य बना ले, और यही फिर अविनाशी धन ही हमें सतयुग में प्रालब्ध के रूप में प्राप्त होता है। तो समय का महत्व, समय का खजाना भी हमने जान लिया। बाबा ने हमें कैसे दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है, ये भी बाबा ने सिखाया। बाबा कहते, ये दुआओं का खजाना तो बहुत ही बेहतर है। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती। दुनिया वालों को पता नहीं है कि दुआएं ली कैसे जाती और दी कैसे जाती। कह तो वो भी देते हैं पर उन्हें वो स्पष्ट और सत्य ज्ञान नहीं है उनके पास, क्योंकि समझ नहीं है, और इसीलिए वो कई बार इस चीज को नहीं समझ पाते। लेकिन बाबा ने हमें कहा, चाहे कोई आत्मा कैसी भी हो पर है तो वो भी आत्मा। कोई कमी भी है लेकिन वो आत्मा तो परमात्मा की संतान है। वो कमी बुरी है उसकी, वो खुद बुरे नहीं है। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना, मनसा से हर आत्मा के लिए शुभ सोचना, वाणी से सुखदायी बोल बोलना और कर्म ऐसा करो जो सुकर्म बन जाए। एक साधारण कर्म भी करते हैं, लेकिन एक साधारण कर्म में भी जब हम बाबा की याद प्लस कर देते, वही साधारण कर्म भी सुकर्म बन जाता। और अगर कोई बड़ा, दुनिया के हिसाब से कोई बहुत बड़ा कार्य भी कोई करता है, देह अभिमान में करता है, गुस्से में करता है, तो वो उसका जमा नहीं होता। लेकिन हम कोई छोटा कार्य भी बाबा की याद में करते हैं, चाहे घर की ही कोई सेवा है, तो हमें ये पता है कि कैसे हमें जमा करना है अपना खाता। तो इस मधुबन में हम आए हैं, हम ये अटेंशन रखें, हम जब से आए और जब ही जाएंगे, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, हम ये लक्ष्य रखें, हम यहाँ आए हैं किस लिए? अपना जमा का खाता बढ़ाने। ज्ञान तो हम सबको है, क्योंकि जो भी आएंगे बाबा मिलन में, वो तो सब धारणा वाले ही आएंगे, तो ज्ञान है। लेकिन मुझे अब अपना जमा का खाता बढ़ाना है, बाबा के ज्ञान को समझकर, सबको मन वचन कर्म से शुभ सोचकर अपना पुण्य का खाता, दुआओं का खाता जमा करना है। क्योंकि बाबा कहते, आपका एक संकल्प भी मुझ, बाबा कहते जिम्मेवार आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, एक व्यर्थ संकल्प वातावरण को दूषित कर रहा है और एक मेरा शुद्ध और पवित्र संकल्प वातावरण को, प्रकृति को पावन बना रहा। तो हम जो भी ब्राह्मण हैं, वो जिम्मेवार आत्माएं हैं, इसलिए ये जिम्मेवारी है हमारी कि हमें अपने संकल्पों को सदा शुद्ध रखना है, शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के प्रति रखना है। क्योंकि ये ज्ञान हमारे पास से, दुनिया वालों के पास नहीं। हमें बाबा ने सिखाया कैसे दुआएं देनी है और कैसे श्रेष्ठ कर्मों से अपनी भी दुआओं से झोली भरनी है। आप देखना, दुनिया में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी का कई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई बच जाता है, तो कहते हैं न जाने कौन सी दुआएं आड़ आई, पुण्य आड़ आया, ये फलाना तो बच गया। तो वो दुआएं, वो कमाई कमाई थी जब तो काम आई समय पे। तो हमें तो कई बार बाबा बहुत मदद करते हैं, कई बार असंभव भी संभव हो जाता, क्योंकि वो दुआएं हमें मदद करती है। इसलिए ये दुआओं का खजाना बाबा ने हमें दिया, तो सर्व खजानों का मालिक बाबा वर्तमान समय हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बना देते हैं। क्योंकि जो भी खजाना हमें मिला, हमें उसे जमा करना है तो यूज भी करना होगा। किसी के पास बहुत धन दौलत हो, पर उसे बढ़ाने की विधि ही क्या है? उसे बढ़ाने की विधि है उसे कार्य में लगाना। तो जो खजाने अब हमें मिले हैं और हम सब बाबा मिलन में आए हैं और बाबा से हम सब का बहुत प्यार है, और जिसके साथ प्यार होता है उसके जैसा बनते हैं, और जो उसको पसंद होता है वही किया जाता है। तो बाबा से प्यार है और जिससे प्यार है, जब उससे हम मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? तो बाबा से अगर प्यार है तो हमें बाबा की जो भी आज्ञाएं है, श्रीमत है, जो भी बाबा कहेंगे उसे निश्चय और दृढ़ता से धारण करना है। अगर हम धारण करते हैं तो हमारा बाबा से प्यार है। जितना गहरा प्यार होगा उतना हमारे जीवन में धारणाएं आती जाएगी। इसीलिए खजाने तो हमें मिल गए, पर हमें उसे यूज करके अपना पुण्य का खाता, जमा का खाता बढ़ाना है। हम आए भी इसलिए है रिफ्रेश होने, और जाएंगे भी तो अपना पुण्य जमा करके, जमा का खाता, क्योंकि दो तीन दिन भी हम रहते हैं तो हमें बहुत शक्ति मिलती है यहाँ, क्योंकि इतने सारे पवित्र बाबा के बच्चे ब्राह्मण, हमारी दादियों की दृष्टि, बड़ी दीदियों की क्लासेस हमें मिलती है, जिससे हमारे भीतर शक्ति आती है और जो कड़े पुराने संस्कार है उसे निकालने की विधि भी हमें यहाँ प्राप्त होती है। इसीलिए इस संगम युग में हमें कई खजाने बाबा ने दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे खजाने हमें बाबा ने दिए हैं। उन सर्व खजानों को मुझे जीवन में यूज करना है। बाबा कहते हैं जब हम सर्व खजानों को बांटेंगे तो हमें दुआएं मिलेगी और हम लोक पसंद भी बन जाएंगे। MLP मन पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट लेना है। अर्थात हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, जैसे हम आए हैं, तो हम अपने पुरुषार्थ से भी खुश रहे। कई बार हम सोचते बहुत है, हम ये करेंगे और कर नहीं पाते, तो हम खुद को भी खुद प्यार करें, खुद भी कुछ स्वयं को जैसा मैं चाहूं, भाई मुझे ये करना है तो करना ही है, क्योंकि मेरे पुरुषार्थ से भी मुझे संतुष्ट रहना है। और दूसरा, लोग पसंद अर्थात जो भी हमारे संपर्क में आए, जब हम संतुष्ट करते हैं, दुआएं देते हैं, तब हमें सब पसंद भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है प्रभु पसंद। प्रभु पसंद वही बनेगा जो प्रभु की आज्ञा पर चलेगा, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वही बाबा को प्यारे लगते हैं। क्योंकि बाबा को क्या चाहिए, बाबा कहते दिल तक नशीन बच्चे बनो। भाग्य की निशानी है, भाग्य की तीन निशानी है, ताज, तिलक और तख्त, जो सतयुग में तो मिलेगा लेकिन संगम युग में भी बाबा ने हमें दे दिया। ताज हमें कौन सा मिला है, सबको, हम सबको बाबा ने पवित्रता का ताज पहनाया। जिस दिन हम बाबा के घर में आए, आत्मा का ज्ञान मिला, पवित्र भव, योगी भव का वरदान मिला, पवित्रता का ताज। फिर बाबा कहते तिलक, सतयुग में तो मिलेगा राज्य तिलक रत्न जड़ित ताज, पर वर्तमान समय बाबा ने हमें आत्मस्मृति का तिलक दिया कि आत्मिक स्मृति में रहकर ही आत्मा को देखना है। और तखत पोजीशन, बाबा कहते दुनिया में चाहे कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चों का जो पोजीशन है वो कितना ऊंचा है। बाबा कहते हैं कि स्वयं भगवान ने जिन्हें अपना बनाया या परमात्मा जिनका पिता है, दुनिया में कोई बड़े व्यक्ति का बेटा होता है उसको बड़ा नशा होता है कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ। बाबा कहते हम तो उस पिता के बच्चे हैं जो संसार का ही मालिक है, जो सबसे ऊंचे ते ऊंचा, जो सर्व खजानों का ही मालिक है, सत्युगी दुनिया का रचयिता है। तो ऐसे बाबा की हम संतान हैं, तो इस खुशी और नशे में हमें सदा रहना है कि हमें कौन मिला। जब हम ऐसा चिंतन करेंगे तो हमारे भीतर ज्ञान का चिंतन होने से हमारी अवस्था भी श्रेष्ठ होगी। सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। हम सब विस्मृत हो गए थे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ और क्या लक्ष्य मेरा। बाबा ने हमें सब स्मृतियां दे दी। सबसे पहली स्मृति दी खुद की, फिर घर की, लक्ष्य की, लक्षण। और जैसे जैसे हम स्मृति स्वरूप बनते गए, वैसे वैसे मोह नष्ट होता जाएगा। इसीलिए लास्ट अध्याय में कहा है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, स्मृतिर्लब्धा स्मृति स्वरूप। बाबा की स्मृति के हम स्वरूप बनते जाए तो मोह नष्ट होता जाएगा और बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी। बाबा के साथ संबंध, बाबा के साथ कनेक्शन, ये सबसे बड़ी बात है जो कि हम बाबा से जुड़ जाते हैं। एक बार एक छोटी सी बच्ची पहाड़ी चढ़ रही थी और एक उसका छोटा भाई, खुद बच्ची छोटी थी 8-10 साल की, और उसका एक छोटा भाई उसको गोद में उठाकर वो पहाड़ी चढ़ रही थी। एक संत महात्मा पास में से गुजरे, उन्होंने देखा कि ये बच्ची ऐसा बोझ लेके चल रही है, तो उन्होंने कहा कि उस बच्ची को कहा, बेटा तुम इतना बोझ लेके क्यों जा रही हो? उस बच्ची ने बोला, महात्मा जी दिखता नहीं है आपको, ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है भाई, क्योंकि उसका प्यार है। तो जहाँ प्यार है, मोहब्बत है, वहाँ वो बोझ बोझ नहीं लगता। तो बाबा से अगर हमारा प्यार है तो बाबा की कोई भी श्रीमत, कोई भी धारणा हमें मुश्किल नहीं लगती है, क्योंकि जहाँ संबंध है वहाँ त्याग तपस्या भी है, जहाँ संबंध है वहाँ समर्पण मेहता भी है। और हमारा संबंध तो सर्वोच्च के साथ है, जिस संबंधों में सर्व सुखों का रस भरा है, परमात्मा के साथ सर्व संबंध और सर्व संबंधों का रस बाबा से लेते हैं, तो अपने आप हमारी बुद्धि बेहद की बनती जाती है। तो बेहद के घर में हम आए हैं, बेहद का ज्ञान हमें बाबा ने दिया है, तो हम अपने अपना खाता, जमा का खाता बढ़ाकर और अच्छी प्रतिज्ञा करते हुए, अपना चार्ट सही रखते हुए हम जाएंगे, और जहां भी जाएंगे, जिस स्थान पर जाएंगे, जहां से भी आए, वहां भी बाबा की सेवा करते हुए उस दुनिया में भी जाने के बाद हमें अपनी अवस्था पर पूरा ध्यान रखना है। और हमारी अवस्था, क्योंकि जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, और अवस्था को अच्छा बनाने के लिए हमें सदा प्राप्तियों को सामने रखना है कि हमें क्या मिला है। एक छोटी सी कहानी है, एक पिंजरे में एक चिड़िया थी, सोने का पिंजरा था, चिड़िया को दाना पानी सब कुछ उस पिंजरे में था, एक झूला भी था, चिड़िया के पास सब कुछ था, दाना भी, दाना पानी, झूला भी था, पर वो पिंजरे में थी। उतने में सामने से एक आकाश में चिड़िया उड़ रही थी, उस पिंजरे वाली चिड़िया ने उसकी ओर देखा। अब उसके मन में क्या आया होगा, उसके मन में आया, ये कितनी भाग्यवान है जो मस्त गगन में उड़ रही है, और एक मैं हूं जो पिंजरे में बंद पड़ी हूं। उसके मन में आया, ये कितनी भाग्यवान है, जहां मर्जी चाहे वहां घूम सकती है, और मैं जो हूं पिंजरे में बंद हूं। अब उतने में क्या हुआ कि वो उड़ती हुई चिड़िया ने पिंजरे की चिड़िया को देखा, और उसने क्या सोचा, ये कितनी भाग्यवान है, इसको तो दाना पानी इकट्ठा करने की कोई चिंता ही नहीं है, सब कुछ इसे मिल जाता, और बड़ी बात, ये बड़ी सुरक्षित है, इसके ऊपर कोई इसे कुछ नहीं कर सकता, और मैं सर्दी गर्मी ओले सब सहती हूँ, और यहाँ तक चील बाज पंछियों से भी मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ती, ये तो बड़ी सुरक्षित है पिंजरे में। अब उसके भी मन में ये आने लग गया कि ये कितनी भाग्यवान है, और पिंजरे वाली चिड़िया सोच रही है ये उड़ने वाली चिड़िया कितनी भाग्यवान है। अब धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्याएं, दुर्भावनाएं आने लगी, ये भाग्यवान है, ये इसको सब मिला है, हमें क्या, मैं तो उड़ रही हूँ, मुझे तो कुछ भी हो सकता है। अब आप सोचो, अगर ये उल्टा हो जाए तो, अगर पिंजरे वाली चिड़िया सोचे कि मैं भाग्यवान हूँ, मुझे तो इतना घूमना भी नहीं पड़ता, मुझे तो सब कुछ दाना पानी मिलता है यहाँ पे, और उड़ने वाली चिड़िया सोचे कि मैं भाग्यवान हूँ, ये तो पिंजरे में बंद है, मैं तो उड़ रही हूँ, मर्जी से उड़ सकती हूँ, निर्बंधन हूँ, अगर दोनों अपनी प्राप्ति को देखे तो खुशी में बदल जाए, पर दोनों एक दूसरों की प्राप्ति को देखकर खुद की कमी को देख रही है तो उनकी खुशी गायब हुई है। तो बाबा भी कहते हैं कि अपने भाग्य को देखो, जो मिला उसको देखो, और उसके लिए बाबा को शुक्रिया कहो। ये नहीं कि हम दूसरों को देखते देखते हम स्वयं का भाग्य भूल जाए। तो हम यहाँ आए हैं तो अपने भाग्य की महिमा गाए कि हम बाबा से मिलने आए हैं, हमारा कितना भाग्य है, कल बाबा आएंगे, हमारा श्रृंगार करेंगे, और श्रृंगारे हुए बच्चे ही बाबा को पसंद है। बाबा अपने बच्चों को कितना ऊंचा टाइटल देते, संसार के हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट बच्चे तो आप है। हाईएस्ट ऊंचे थे उन सारे कल्प में आपका स्थान ऊंचा है और बाबा के करीब का है। बाबा कहते पवित्रता में भी आपकी पवित्रता संसार में सबसे महान है, क्योंकि स्वयं परमात्मा के आज्ञा अनुसार हम पवित्र बने हैं। और रिचेस्ट कहे तो बाबा मिला, सब कुछ मिला, पाना था सो पाले, और जो भी बाबा का बना बाबा उसे भरपूर कर देते हैं, उतना देते हैं जितना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं, ज्यादा हो तो हम बाबा को याद नहीं करेंगे। इसलिए संगम युग में भाग्यवान है वो आत्माएं जो साधारण है, जो परमात्मा में अपने मन को लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा बिजी, बहुत ज्यादा कारोबार वालों के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए हम ज्ञान धन से भरपूर है और बाबा मिला, सब कुछ मिला, इसलिए हम संसार में रिचेस्ट भी है, क्योंकि बाबा ने हमारा जो लाइफस्टाइल जीवन बनाया है वो जीवन जीना, खाना पीना वो सब पालना हमें बहुत ऊंची मिलती है। आज देखो बाबा के घर में हम आए हैं, हमें खाना देखो कैसा मिलता है, रहने की व्यवस्था देखो कैसी मिलती है। तो ऐसे ऊंचे पिता हमारी पालना करते हैं तो हम बाबा को शुक्रिया कहे कि हमें कितनी प्राप्ति हुई, और जब हम प्राप्ति को सामने रखते हैं तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी है खुशी जैसी खुराक नहीं। बहुत बड़ा एक कोटेशन है ये, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा, आगे चिंता जैसा रोग नहीं। चिंता चिता के समान है और वह चिता मरे को जलाती है, पर चिंता रूपी चिता तो जिंदे को जलाती है। इसीलिए चिंता छोड़ क्या करो, प्रभु चिंतन करो। तो प्रभु चिंतन कैसे करना है वो बाबा हमें रोज मुरली से सिखाते हैं। इसीलिए खुशी से अपना खजाना भरपूर रखना है, प्राप्तियों को सामने रखना है और सदा बाबा को अपने पास रखना है। बाबा ने एक मुरली में तीन पास हमें बताए थे। पहला पास, हमें बाबा को अपने पास रखना है सदा करीब, और दूसरा, हर परीक्षा में हमें पास होना है, हर परीक्षा में पास होना है। क्योंकि जो परीक्षाएं आती है ना वो क्यों आती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए। क्योंकि सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हमारे में कुछ गुण हैं और कुछ नहीं है, लेकिन वो गुण आएंगे कैसे, कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो गुण भी भर जाते हैं। जैसे देखो बचपन में बच्चों को क्या करते हैं, जैसे दादाजी पिताजी होते तो मुखौटा लगाते, जैसे शेर का लगाया तो बच्चा डर जाता है, और जब उसको पता पड़ जाता है ये तो नकली है तो खुश होता है। बाबा भी कहते समस्याएं ऐसी है कुछ नहीं, केवल आई है हमें आगे बढ़ाने के लिए। ये आती है तो हम निखर जाते हैं, और जो जितना आगे बढ़ता है उतनी उसको तूफान भी आएंगे। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो पर अगर बाबा पे निश्चय है और बाबा का साथ है तो परिस्थितियां भी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है। हर चीज से हमें शिक्षा मिलती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए इस संगम युग में हर बात कल्याणकारी है। बाबा कहते अकल्याण किसी चीज में है ही नहीं। कई बार वो मुखौटा दिख रहा है शेर का, पर उसके पीछे भी बड़ा कोई राज छिपा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि असफलता हो रही है, लेकिन उस असफलता के पीछे भी सफलता ही छिपी है, क्योंकि हम पुरुषार्थी है। कभी पुरुषार्थ करते हैं जीत जाते हैं, कभी हार भी जाते, पर यही चीज हमें अनुभवी बनाती है, और अनुभवी बनने के बाद अनुभवी फिर कभी भी फंसता नहीं है। माया की माया को परखने की भी उसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए ये तूफान भी बाबा कहते हैं कल्याणकारी है, जिसको तीन बिंदी बाबा कहते कि आत्मा को देखो, पहला बिंदी मैं आत्मा और दूसरा बिंदी बाबा, बाबा को सदा साथ रखना है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो मुझ आत्मा का मात पिता सखा साथी टीचर सदगुरु सब कुछ है, उस बिंदु को मुझे याद करना है। और तीसरा ड्रामा के ज्ञान को सदा याद रखना है कि कल्याणकारी है, इस ड्रामा में कुछ भी अकल्याणकारी नहीं है, हर बात में कहीं न कहीं कल्याण भरा है। तो इसलिए स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहे, वो हम आत्माओं को पावन बनाने आए हैं, वो हमारी झोली भरने आए हैं। ती मार्ग में हमें ये मौका नहीं मिला था, हम पुकार रहे थे, लेकिन अब हमें प्रभु मिलन का मौका मिला और उस परमात्मा से जितना चाहे उतना रत्नों से झोली भरने का भी यही सीजन चल रहा है भाग्य बनाने का। तो हम अपने जीवन को ऐसे ही श्रेष्ठ बनाएं और मधुबन वरदान भूमि से खूब सारे वरदान लेकर और बहुत सारी कमाई करके, अविनाशी कमाई करके साथ ले जाए। ओम शांति।